ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। और इस आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी सुधा देवी जी। करतल ध्वनि से हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। यूं तो सुधा देवी जी भारत की धरनी से ही निकली ईश्वर की अनमोल रत्न है। विशेषकर दिल्ली की धरनी से आप निकले हैं, और चूंकि बाबा कहते हैं कि मैं सर्व आत्माओं का पिता हूं, पूरे संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सर्व का पिता हूं, सिर्फ भारत देश वालों का नहीं, और इसलिए देश विदेश की सेवाएं भी बहुत जरूरी हो जाती है, तब जाकर हमारे पिता विश्व कल्याणकारी कहलाते हैं, है ना? तो ऐसा ही पाठ बाबा को विश्व कल्याणकारी सिद्ध करने के लिए आपको मिला। विदेश की धरनी पर जाने का आपका अवसर बना आज से करीब 25-30 साल पहले, 27 साल पहले, 2 साल पहले ही आप लोगों ने, जहां मास्को में रहते हैं वहां पर ईश्वरीय सेवाओं की रजत जयंती मनाई, सिल्वर जुबली भी मनाई आप लोगों ने। तो रशिया के जो मुख्य 2 सेंटर्स हैं, एक है मास्को और एक है सेंट पीटर्सबर्ग। तो मास्को सेंटर, उससे कनेक्टेड सारे सेंटर्स विशेष करके आप संभालते हैं। यूं तो पूरे रशिया की आप डायरेक्टर हैं, और साथ साथ में बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, माँ जो होती है बच्चों के लेवल पर पहले उतर कर आती है और फिर अपने जैसा बच्चों को बनाती है। तो खास करके हमारी जो बहनें विदेश में, विशेषकर रशिया में गई हैं, उन्होंने ये कार्य किया है। पहले उन बच्चों की भाषा सीखी और उन बच्चों की भाषा सीखकर फिर बाबा की भाषा सिखाई उनको, और बाबा जैसे उनको ऊंच बना रही है। तो और भी काफी विशेषताओं से संपन्न है हमारे दीदी जी। तो अपने अनुभव से आज हम सबके सामने दीदी ये बात रखेंगे कि बाबा जो हमें कहते हैं कम खर्च बाला नशीन, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो इस पर आप प्रकाश डालेंगे। आदरणीय सुधा दीदी जी।
थैंक यू इंद्रबेन। इंद्रबेन एक सेकंड अगर आप रुक सकें तो मेरा ख्याल से ये सही रहेगा। आपने लास्ट में कहा कि पहले उनकी भाषा सीखकर फिर उनको बाबा की भाषा सिखाई, तो एक ऐसा सैंपल मैं अपने साथ ले आई थी, और तो मैंने सोचा कि क्लास के बाद थोड़ा सा उनका भी अनुभव सुन लेंगे, शायद आपको अच्छा लगेगा सुनने में, अच्छा लगेगा। हाँ, रशिया के भाई का, 2 जने आए हैं, एक भाई एक बहन, तो मैं एक भाई को बुलाती हूँ सामने पहले, शायद उसी से शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद टॉपिक से शुरू करेंगे। तो वो बहुत पुराना है ज्ञान में, थोड़ा अपने बारे में खुद ही बताएंगे, और सबसे बड़ी बात है वो थोड़ी हिंदी बोलते हैं। आप हिंदी समझने की कोशिश कीजिए उनकी हिंदी को, तो वो धीरे धीरे बोलेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ब्रतलिक्सी,
तो जैसे बताया, तो पहले तो हम इस भ्राता जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। बाबा के ऐसे लालों को देखकर ही अपने आप हृदय में खुशी की लहरें उठती है। सिर्फ देखकर, सुनकर तो और ज्यादा होगा, लेकिन देखकर ही खुशी का एहसास होता है। उनका चेहरा भी एकदम मुस्कुराता हुआ है, गुलाबों की फूलों की तरह, जो बाबा कहते हैं रूहे गुलाब। तो मैं और तो ज्यादा परिचय नहीं दे सकती हूँ, लेकिन बाबा के रूहे गुलाब हमारे सामने है, इतना जरूर कह सकती हूँ, और अपना परिचय वो अब स्वयं ही देंगे।
ओम शांति। मेरा नाम अलेक से है।
समझ में आ रहा
है? तो मैं डॉक्टर हूँ, और अभी मैं 9 साल से एक सेवा केंद्र चलाता हूँ, और साथ साथ मैं डॉक्टर का सेवा चलाता हूँ। तो बाबा ने कहा आप डबल विदेश डबल सेवा करो, रूहानी सेवा और शारीरिक सेवा, ये 2 सेवा करो। तो एक दिन दीदी ने पूछा मुझे, आओ भाई जी आपका सेवा केंद्र में क्या करते हैं? तो मैंने कहा पहले सुबह क्लास कराता हूँ, फिर थोड़ा नाश्ता खाता हूँ। फिर दीदी ने पूछा, फिर डॉक्टर का सेवा 2-3 घंटे से एक हॉस्पिटल में करता हूँ, फिर लंच तोर अरेस्ट। फिर दीदी ने पूछा क्या करेंगे, तो फिर मैंने कहा इवनिंग क्लास और कल का प्रिपरेशन। तो दीदी ने कहा ये कुछ नहीं, ये फ्री है, फ्री है। तो मैं समझता हूँ ये फ्री है। तो यू नो पार्टीशन से पहले रशिया ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। तो 25 साल से पहले एक ही देश था, सोवियत यूनियन। तो अभी पार्टीशन के बाद ये 15 अलग अलग देश हुए हैं। तो गवर्नमेंट अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, पैसा अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, सब अलग अलग है। तो दीदी ने बोला अभी हम 11-12 देश से सेवा चलाते हैं, तो 2-3 देश बाकी है। तो एक देश मुस्लिम है, तो वहां जाओ 3 मास के लिए। तो मैंने सोचा 3 मास के लिए कुछ है, तो मैं एक कुर्ता पजामा लिया है, एक बर्तन, एक चम्मच, एक थाली, तो छोटा पर्स लिया है। तो दीदी ने बोला 3 मास के लिए वहां जाओ। सो मैं पहुंच गया, ये बहुत दूर है, रशिया से बहुत दूर है और भारत से बहुत नजदीक है, 2 घंटे फ्लाइट से। तो पहले हम एक हाथ योग क्लब में सेवा किया है, तो वहाँ एक लौकिक हाथ योग टीचर, हाथ योग शिक्षक आसन सिखाया। तो कोई शिक्षक को ने कहा, एक राजयोग शिक्षक आ गया हमारा नगर में। तो हाथ योग टीचर मुझे बुलाया, ओ बहुत अच्छा राजयोग है, आओ आओ। तो टीचर ने पूछा आपको पैसा चाहिए, तो मैंने बोला नहीं, हम फ्री सेवक चलाते हैं। ओ बहुत अच्छा है, वहाँ लोग पैसा दे रहे हैं आसन के लिए। तो पहले 20 मिनट दिया है, पहले आसन सिखाया हाथ योग शिक्षक, फिर मुझे थोड़ा लेक्चर्स कराया, पहले 20 मिनट दिया, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट दिया है। तो 5 दिन के बाद बहुत बहुत लोग आ गए। मैं कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट समझ आया, तो बहुत बहुत लोग आ गए। तो टीचर बहुत खुश रहे थे, ओ बहुत लोग आ गए, अभी बहुत पैसा आएगा। तो मैं पहला दिन हमारे देश में, रशिया में, यहाँ भारत में कोर्स कितना दिन है? 7 दिन का कोर्स है। हाँ,
7
दिन का। वहाँ कोर्स बहुत लंबा है, 20-22 दिन का कोर्स कराते हैं। 2-3 दिन समझ जाते मैं कौन हूँ, फिर 2-3 दिन समझ जाते परमपिता परमात्मा कौन है। सो रशिया वाले के लिए बहुत मुश्किल है, क्यों
70 साल
नो रिलीजन, नो फेथ। सो रशिया वाले के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा देश मुस्लिम है, 99 लोग मुस्लिम है, 99 लोग मुस्लिम है।
तजिकिस्तान
देश का नाम तजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। सो पहला दिन में समझाए आत्मा सब्जेक्ट, सो दूसरे दिन परम पिता परमात्मा का सब्जेक्ट समझाए, तीसरे दिन अवगुण सद्गुण क्या है समझाया, फिर 5 दिन के बाद मैं सृष्टि चक्र समझाया। तो टीचर कहा है झूठ बोलते हैं, हमारा आसन से हम ऊंच बनेंगे, हमारा आसन आप क्या कहते हैं, हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, झूठ है, जाओ। पहले रोज बुलाया आओ आओ, 5 दिन के बाद कहा जाओ, झूठ बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ, हम ये मकान में एक छोटा रूम लिया है। सो फिर क्या हुआ, 75% लोग हमारा क्लास शिफ्ट किया है,
हाथ योग छोड़ के वहाँ आ गए।
सो एक बहन ने कहा, पहले मुझे ने कहा भाई जी यहाँ सेवा कभी नहीं करो। तो मैंने पूछा क्यों, बहन ने कहा ये मुस्लिम देश है, सो जल्दी से जल्दी पुलिस आएगा, टैक्स डिपार्टमेंट आएगा और शक्तिशाली मुस्लिम लोग आएंगे, सो यहाँ सेवा कभी नहीं करो, हमारे देश देख लो, थोड़ा बातचीत करो, कुछ सेवा कभी नहीं करो। देखो अभी हम 4 साल सेवा चलाते हैं, सो 4 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है, शक्तिशाली मुस्लिम वाले ऐसे करते हैं। नमस्ते क्यों, वहाँ मुस्लिम देश में सारे भाई बॉस है, पानी लाओ, भोजन लाओ, ये करो, दो तीन भाई
है। कहते हैं कि पुरुष लोग है ना मुस्लिम देशों में, बॉस है अपने घर में, कुछ नहीं करते हैं, ऑर्डर देते हैं खाली।
सो पहले तो स्टूडेंट्स नहीं थे वहाँ, सो मैं मेरा हाथ से सारी सेवा किया है. सो सफाई सेवा और क्लीनिंग विंडोज कपड़ा रिप्लेस किया है. सो दो तीन लोकल मदर्स दे वॉच मी. सो फिर मैंने पूछा क्या हुआ. सो एक बहन ने कहा पहला बार दिखा भाई हाथ से सेवा करता है. सो हमारा हस्बैंड बॉस है, भोजन लाओ पानी लाओ ये करो. सो कुछ सेवा कभी नहीं करते. सो हम पहला बार दिखा. सो फिर दूसरा अच्छा एग्जाम्पल ये हमारा पवित्रता है. सो हमारा रूप से हमारा फेस से ऐसा गुण देखते है पवित्रता. सो अभी चार साल से चल कोई प्रॉब्लम नहीं है.
कितने साल से ज्ञान में है आप?
25
ईयर्स से ज्ञान में है वो. वो मॉस्को से दूर एक शहर है 2 घंटे की फ्लाइट पर, उस शहर का नाम पेर्म है. वो वहां से है और जब ये स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट था, हाँ प्रेम कहती हैं, तो ये जब स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट, तब आया था ज्ञान में. और उस सेंटर पे सब माताएं थी, सिर्फ एक कुमार था ये भाइयों में और कोई नहीं था. लेकिन चलता रहा, फिर डॉक्टर बन गया, फैमिली क्लिनिक हो गया, सब कुछ हो गया. इसके लौकिक घर से कोई नहीं चलता है ज्ञान में. फिर हमने इसको मॉस्को के नजदीक एक शहर है, वो समझो 2 घंटे का ट्रेन में है, तो वहां सेवा शुरू करनी है. तो वहां उसने सेवा शुरू की उस ट्वेर में, और वहां सेंटर को एस्टेब्लिश किया, चलाया. फिर जब ये ताजिकिस्तान की बात आई तो हमने सोचा कि वैसे तो मतलब ये दो देश हैं जो अभी बचे हैं, ताजिकिस्तान में तो शुरू हो गया और एक तुर्कमेनिस्तान है, वो बहुत कट्टर है, बहुत बहुत. तो वहां अभी सेवा नहीं हुई है शुरू. बाकी सब कई मुस्लिम देश और भी हैं, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, वहां पे भी सेवा होती है. कजाकिस्तान में तो हमारे 4-5 सेंटर्स हैं, किर्गिस्तान है, वहां पे भी मतलब मुस्लिम देश भी कई हैं उसके कनेक्शन में. और तो हमने इनको भेजा तो 3 मास के लिए ही था. और जैसे बताता है, एक कुर्ता पजामा लेके चला गया और एक छोटा सा बैग लेके, सोचा मैं वापस आ जाऊंगा. लेकिन बाबा तो ऐसे ही काम कराता है ना. तो फिर लेकिन धीरे धीरे आप उसको कहो कि वापस आ जाओ तो वापस नहीं आना चाहता है. कहता है कि मुझे तो वहां ताजिकिस्तान से फिर तुर्कमेनिस्तान में भी आगे जाना है. तो मतलब अपने यंग बहुत एंथुजियास्टिक है, थकता कभी नहीं है. और सबसे बड़ी बात है, खाना भी खुद बना लेता है, टोली भी बना लेता है, सफाई भी कर लेगा, सब कुछ. तो वही वहां की माताओं ने जब देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई होके काम करता है, ऐसा तो हमने सारी जिंदगी में नहीं देखा. और उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा तो बाबा ने ऐसा वंडर उनको दिखाया, उनके लिए एक वंडर था ये. तो इस प्रकार बहुत अच्छी सेवा वहां चल रही है. धीरे धीरे बाबा के बच्चे भी तैयार होते जा रहे हैं. तो ऐसे मतलब 25 साल से बाबा का बन करके कुमार जीवन और संपूर्ण पवित्र बाल ब्रह्मचारी जीवन चलाकर बाबा के डबल डॉक्टर. और यहाँ पर भी जब आता है तो डिस्पेंस क्लास पूरी होते ही डिस्पेंसरी में दौड़ता है, मेडिकल वहां पे है ना, ज्ञान सरोवर में डिस्पेंसरी, क्योंकि रशियंस बहुत होते हैं, कभी किसी को कुछ किसी को कुछ, तो उनको हिंदी इंग्लिश आती नहीं, और इसलिए वहां ये सेवा भी बहुत देता है. तो इस प्रकार बाबा के बच्चे वहां पर सेवा कर रहे हैं. ओके, शांति. ओके तो ओके, अभी हम शुरू करेंगे. और आज हमारा टॉपिक है कम खर्च वाला नशीन. आप कौन है, आपका टॉपिक, आपका यही मोटो है लाइफ का, या अधिक खर्च और बाला नशीन? आपका टॉपिक भी, आपका भी यही मोटो है, कम खर्च बाला नशीन. तो आप इससे इसका क्या अर्थ समझते हैं, कम खर्च बाला नशीन? कम खर्च बाला नशीन, हाँ, क्या अर्थ है इसका? एक कहावत है रशियन में कि उसका अर्थ ये है कि मैं इतना धनवान नहीं हूं कि चीप क्वालिटी की चीजें खरीदूं. मैं इतना धनवान नहीं हूँ कि मैं चीप क्वालिटी की चीजें खरीदूं। मतलब क्या कि अगर चीप क्वालिटी की चीजें खरीदते हैं तो वो जल्दी टूट जाती हैं, मतलब यूज करने योग्य नहीं रहती हैं, और आपको फिर और नया फिर और खरीदना पड़ता है। तो वही चीज जो आपको 5 साल काम आ सकती थी थोड़ा सा अधिक पैसा डालने से, और अब वो आप 5 बार खरीदेंगे उसको, तो उसमें 2 गुना 3 गुना पैसा ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए कम खर्च का अर्थ ये नहीं है कि हम चीप क्वालिटी की चीजें खरीदें। तो चीप खरीदना या इनएक्सपेंसिव चीजें खरीदना या अधिक महंगी चीजें ना खरीदना, इसका मतलब ये नहीं कि हम चीप क्वालिटी की चीजें लें, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खाने की चीजें। मान लीजिए हमने चीप जाके आलू खरीद के आ गए एक बोरी भर के, हाँ, और उसको जब छीलने लगे तो उसमें से आधा वेस्ट हो गया। हम समझ रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि तो हम तो चीप खरीद के आए हैं, कम तो खर्च किया, लेकिन बाला नशीन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें से आधा तो वेस्ट चला गया, उसमें से आधा तो हमको काट के फेंकना पड़ा। हाँ, वही हमने कपड़ा खरीदा चीप क्वालिटी का, तो फिर उसको वो चला ही नहीं, थोड़े 2-3 धुलाई के बाद ही ओम शांति। हाँ, तो फिर तो वो कम खर्च तो हुआ लेकिन बाला नशीन तो हुआ ही नहीं। तो हमको ये बहुत अच्छे से समझना है वास्तव में कम खर्च बाला नशीन का अर्थ क्या होता है। वैसे अगर आप बाबा की मुरलियों में सुनेंगे तो बाबा हर बार बैलेंस की बात करते हैं। बाबा का जो मेन बहुत प्रिय शब्द है वो है बैलेंस। वास्तव में हमारा सारा ज्ञान ही बैलेंस का है। हम लोग जब पहला लेसन सुनते हैं कि आप आत्मा हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको शरीर को निग्लेक्ट करना है, शरीर को इग्नोर करना है, शरीर का ध्यान नहीं देना है। बाबा ऐसा कहा करते थे कि जो बच्चे शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात उनको शरीर का ज्ञान, शरीर को कैसे संभालना है, उसका ज्ञान नहीं है, तो वो बच्चे भी ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहला सकते, क्योंकि उनका शरीर सेवा में फिर विघ्न बन जाएगा। वो सेवा करना चाहेंगे मगर शरीर उनका ऐसा कमजोर या बीमार होगा कि वो सेवा करना चाहते भी नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ये बात समझ लेते हैं कि जो भी बाबा कहते हैं उसको बैलेंस शब्द के साथ कनेक्ट करना है, जो भी कहते हैं, हमारी पढ़ाई ही बैलेंस से शुरू होती है। आप आत्मा हैं, आत्मा ड्राइवर है, शरीर कार है, तो ड्राइवर को तो ख्याल अपना करना है मगर कार का ख्याल करना भूल नहीं जाना है। कार को अगर ख्याल नहीं करेंगे तो कार कहीं पे भी एक दिन रुक जाएगी, और अगर रुक जाएगी अचानक से तो मुश्किल किसको होगी, ड्राइवर को, और सिर्फ ड्राइवर को नहीं अन्य बहुतों को भी होगी उसके कारण से मुश्किल। तो शुरू ही हमारा लेसन बैलेंस से होता है। कभी बाबा लौकिक अलौकिक के बैलेंस की बात करते हैं, कभी बाबा रमणीकता और गंभीरता के बैलेंस की बात करते हैं, कभी बाबा स्वमान और सम्मान के बैलेंस की बात करते हैं, बहुत सारे बैलेंसेज हैं। तो इसी प्रकार ये जो टॉपिक है कम खर्च बाला नशीन, इसको भी हमें बैलेंस शब्द के साथ कनेक्ट करना है। बाबा इसके लिए कहते हैं कि इकोनॉमिक भी आपको होना चाहिए लेकिन साथ साथ फ्राक दिल भी होना चाहिए, जेनरस भी आपको होना चाहिए, कंजूस दिल नहीं, छोटे दिल वाला नहीं। कल बाबा ने कहा बड़ी बड़ी देगड़ियां कितने साल से इस यज्ञ में बनती ही जा रही हैं, तो ये फ्राक दिल की निशानी है। हाँ? कभी कमी नहीं होती है, 100 के बजाय अगर 200 भी आ गए तो भी खा लेते हैं, तो ये फ्राक दिल है, लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक भी। तो कम खर्च बाला नशीन का अर्थ क्या है कि कुछ भी वेस्ट ना हो। ऐसा भी बाबा कहा करते थे जब किसी को मार्केटिंग के लिए भेजते थे साकार दिनों में, तो बाबा देखते थे बच्चों की नेचर किस प्रकार की है। किसी बच्चे की नेचर मान लीजिए ऐसी है कि वो एक शॉप पर गया, पूछा ये चीज कितने की है, शॉपकीपर ने बताया ये इतने की है, उसने वो खरीद के घर आ जाएगा। और कोई दूसरा बच्चा है वो इस शॉप पर जाएगा, पूछेगा इस चीज का रेट क्या है, चीज की क्वालिटी को चेक करेगा, फिर दूसरी शॉप पर जाएगा उसी चीज का रेट पूछेगा, उसकी क्वालिटी को भी चेक करेगा, तीसरी पर चौथी पर तीन चार शॉप्स पर जाकर के वो रेट्स को और क्वालिटी को कंपेयर करता है, उसका वो नेचर है। तो यज्ञ के लिए सामान खरीदने के लिए बाबा इस सेकंड वाले बच्चे को भेजते थे कि खरीदना तो अच्छी चीज है, मगर अगर वही अच्छी चीज कम दाम में मिल जाए तो वो बेटर है। तो बाबा उसको चूज करते थे कि तुम जाओ, तुम जाकर के मार्केटिंग करके आओ, क्योंकि उसकी नेचर थी ये नहीं कि एक स्थान पे गया लिया और खरीद के घर आ गया, उसमें से आधा सामान सड़ा हुआ निकला या जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं। तो कम खर्च वाला मशीन, माना कुछ भी वेस्ट ना हो, अगर हम मिनिमम में मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं तो वो है उसका सार, कम खर्च वाला मशीन। तो वो अप्लाई होता है फिजिकल धन पर भी, लेकिन साथ साथ वो अप्लाई होता है जो प्रकृति के तत्व हैं, तत्वों से बनी चीजें हैं, उन तत्वों से बनी चीजों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, चाहे वो तत्व स्वयं में है, पानी है। मान लीजिए आपको भोजन बनाना है, तो आपने अभी कोई सब्जी बनानी है या चावल बनाना है, जो भी बनाना है आपको, आपने बर्तन अभी तैयार किया नहीं, मसाले तैयार किए नहीं, सब्जी तैयार हुई नहीं, और गैस को ऑन कर दिया या इलेक्ट्रिक प्लेट को ऑन कर दिया, पहले से ही वो तो ऑन है, अपना चल रही है, और उसके बाद आपने पतीला निकालना शुरू किया, उसके बाद चाकू से वो कुछ अदरक काटना शुरू किया, उसके बाद फिर नमक मसाला निकालना शुरू किया। बाबा कहते नहीं, मतलब कम खर्च वाला मशीन कौन हो सकता है जो बहुत अच्छे से प्लानिंग बुद्धि है, जो अच्छे से प्लान करता है, और प्लान करने के बाद वो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे ढंग से करता है। चाहे छोटे से छोटा काम हो, साधारण से साधारण काम हो, या बड़े से बड़ा कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम आपको करना है, अच्छी प्लानिंग बुद्धि और अच्छी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी वाली जो आत्मा है ना, वो कम खर्च वाला मशीन हो सकती है। तो हमको ये देखना है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम ठीक से प्लान करके करते हैं या जैसे आया वैसे करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास, आप समझो आपने गैस तो तभी ऑन किया जब आपके पास सब सामान तैयार है, लेकिन गैस बर्नर में आपके पास चार बर्नर्स हैं, आपको सब्जी भी बनानी है, चावल भी बनाने हैं, और दाल भी बनानी है, कुछ और चीज भी बनानी है। अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे तो वही एक घंटा चार चीजें बनाने में चारों बर्नर्स को यूज कर सकते हैं, और अगर आपने ठीक से प्लान नहीं किया होगा तो चार घंटे आप चार चीजों को बनाने में लगाएंगे। बर्नर फायर तो गैस तो आपने वेस्ट नहीं की क्योंकि आप प्लान कर लिया उसको, लेकिन हमको न केवल फिजिकल चीजों को वेस्ट करना है परंतु टाइम को भी तो वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी को भी तो वेस्ट नहीं करना है। कम खर्च वाला मशीन। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि को प्लानिंग बुद्धि बनाएं, अच्छे से सोच लें उसके बारे में, अच्छा ये काम करना है तो ये पहले शुरू कौन सा करना चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा समय लेती है, कौन सी चीज कम समय लेती है। अगर हमारे सबसे ठीक से प्लान किया हुआ होगा तो हम उसी चार कामों को एक ही वक्त में पूरा कर सकते हैं, हमारी एनर्जी भी उससे सेव होती है और टाइम तो सेव होता ही होता है। तो इसलिए बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि दो प्रकार के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचे बिना काम करते हैं, सोचते नहीं बस शुरू कर देते हैं कुछ भी, सोचने का मतलब प्लान नहीं करते हैं, सोचे बिना काम करते हैं, और क्योंकि वो सोचे बिना करते हैं तो काम करने के बाद उनको पश्चाताप होता है कि ये क्यों किया या ऐसा क्यों किया या ये ठीक नहीं हुआ या अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उसको सोचते नहीं है। तो सोचे बिना काम करने से भी पश्चाताप होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतना अधिक सोचते हैं कि उनके पास काम करने का टाइम ही नहीं बचता, वो सोच में ही सारा समय निकाल देते हैं। तो जब हम प्लानिंग बुद्धि की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम ऑर्गेनाइजिंग की भी बात करते हैं। दोनों ही चीजें चाहिए, प्लान बनाना है लेकिन इतना अधिक उस पर समय नहीं लगा देना है कि काम करने के लिए हमारे पास टाइम ही ना बचे। तो सोचते सोचते तो फिर सोचने से तो कुछ नहीं होता, कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, जो सोचेगा सो पाएगा तो होता ही नहीं। कुछ करेंगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगा, कुछ सिर्फ सोचेंगे ही सोचेंगे। यहाँ बैठ करके मैं सोचती रहूं कि हाँ अभी सीजन शुरू हो गया, अभी बीज बोना चाहिए, उसके बाद धरती को तैयार करना चाहिए, अभी उसमें ये वाला खाद डालना चाहिए, सोचते सोचते हॉल के अंदर बैठे बैठे सारा सीजन ही निकल जाए तो कुछ फल तो निकलेगा नहीं। तो कम खर्च वाला नशीन का मतलब हम बुद्धि को अपने प्लानिंग बुद्धि बनाते हैं और साथ साथ अपने को ठीक से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना भी हम अपने आप को सीखते हैं, खुद को भी। कुछ लोग ऐसा भी कभी कभी कम खर्च वाला नशीन के अंदर बात आती है कि कई लोग कोई भी काम को एंड तक नहीं करते हैं, हाफ डन छोड़ देते हैं। अभी अभी ये शुरू करेंगे, थोड़ी देर के बाद उनको कोई और ख्याल आ जाएगा, नहीं ये वाला नहीं, पहले ये वाला कर लो, फिर दूसरा करेंगे तो उसके बाद उनको फिर तीसरा ख्याल आ जाएगा। बड़ा अच्छा प्लान उनका चलता है लेकिन वो पहला काम कंप्लीट हुआ ही नहीं, उसके बाद ऑलरेडी सेकंड प्लान शुरू हो गया उनका, और सेकंड प्लान फिर प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ, फिर थर्ड प्लान शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, एवरीथिंग हाफ डन, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे में एक वो ऐसी ही मतलब ऐसे व्यक्ति की वही हालत है जैसे कहते हैं एक व्यक्ति था, उसको पानी पीने के लिए कुआं खोदने की जरूरत थी। तो किसी ने कहा कि आप फलाने स्थान पर ट्राई करो, वहां पे शायद पानी निकलेगा, आप कुआं खोदना शुरू करो। तो उसने कहा ठीक है, और उसने कुआं खोदना शुरू किया। तो अब मेहनत तो होती है ना खोदने में, तो उसने लगभग एक स्थान पर 2 मीटर खोद दिया और पानी निकला ही नहीं, पानी निकला ही नहीं। तो कहते शायद यहाँ पानी नहीं है, कहीं और मुझे शुरू करना चाहिए। तो वो फिर वहां छोड़ के दूसरी जगह शुरू किया, फिर वहां पे भी 2 मीटर उसने खोद दिया, वहां पे भी पानी नहीं निकला, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर पांचवी जगह, इस प्रकार 12 जगह उसने 2-2 मीटर खोदा, तो टोटल उसने 24 मीटर खोद दिया, लेकिन एक भी जगह पानी नहीं निकला। प्राप्ति तो हुई नहीं लेकिन उसके रास्ते में गड्ढे बहुत बन गए जो डेंजरस थे, क्योंकि एंड तक वो नहीं पहुंचा। अगर एक ही स्थान पर 24 मीटर उसने खोदा होता तो पानी जरूर निकल आता। तो कभी कभी ऐसा भी होता, कोई कहेगा, वो कहेगा व्यक्ति, मैंने सारा दिन कितनी मेहनत की, सारा दिन मैंने कितनी मेहनत की। हाँ जरूर की, रिजल्ट आपने कितना काम किया वो रिजल्ट से मालूम पड़ता है ना। कम खर्च वाला नशीन, खर्च तो उसने बहुत किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वाला नशीन नहीं हुआ। वो था कम खर्च वाला नशीन और हो गया यहाँ अधिक खर्च कम नशीन कम नशीन हो गया, कुछ भी नहीं मिला उस बेचारे को। तो हो सकता है वहां 24 की बजाय अगर 20 ही होता तो कुछ रिजल्ट निकल आता, ठीक है ना। तो इसको हमको अच्छे से समझना है लाइफ में, प्रैक्टिकली हर लाइफ के हर पहलू में ये बात लागू होती है। मान लीजिए आपने कोई भाषण तैयार करना है, आप एक टॉपिक चूज करते हैं, उस टॉपिक पर आप लिखना शुरू कर देते हैं, चर्निंग शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू किया, आपने सोचा कि आज मुरली सुनेंगे ना, तो मुरली को इसी लक्ष्य से ही सुनेंगे कि बाबा ने इस टॉपिक पर क्या आज कहा, मुरली को पूरा वीक हम उसी पर ही मुरली को सुनेंगे। लक्ष्य बहुत अच्छा रखा, दो दिन मुरली उसी एम को रखकर आपने सुनी, और तीसरे दिन कुछ और ख्याल आ गया, वो टॉपिक में चार पॉइंट्स तो दिख लिया आपने, वो टॉपिक तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, टॉपिक तो वहीं का वहीं रह गया। आपको एक वीक के बाद टीचर कहती है कि आपने वो टॉपिक तैयार किया था ना, तो आप उस पर आज भाषण करना, तो आप क्या कहेंगे, टॉपिक तो तैयार हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, आपने तो एक वीक पहले शुरू किया था, क्यों तैयार नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि क्या संस्कार कौन सा काम कर गया, एंड तक उस काम को नहीं ले जाते हैं। टाइम भी स्पेंड किया, एनर्जी भी स्पेंड की, बुद्धि की एनर्जी भी स्पेंड तो की ना, टाइम भी स्पेंड किया, पेपर भी स्पेंड किया, पेपर पे लिखा, पेन की इंक भी स्पेंड की, हाँ वो भी स्पेंड किया, इलेक्ट्रिसिटी भी स्पेंड की, स्पेंड कितना सारा किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तो हमको इस विषय को जीवन के हर पहलू के साथ कनेक्ट करना है कि हम जितना भी कहीं समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं और संकल्प लगाते हैं, बोल बोलते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है। बाबा भी कोई कहते थे, बाबा मैंने बहुत सेवा की, मैंने आज प्रदर्शनी में ना हजारों को समझाया और बहुत सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत प्रेज की। तो आपको मालूम है बाबा क्या कहते थे, बाबा कहते थे बच्चे किसी ने भी बाबा को लिखा ही नहीं कि बाबा आपके बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा समझाया। प्रूफ कहाँ है, आपने हो सकता है की होगी, लेकिन प्रूफ कहाँ है। तो बाबा प्रूफ देखना चाहता है, बाबा रिजल्ट देखना चाहता है, उसको कहते हैं कम खर्च वाला नशीन। जब रिजल्ट हमारे सामने है, हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ स्कूल में जब पढ़ते हैं हम हर साल के बाद नेक्स्ट क्लास पे चढ़ जाते हैं, सेवेंथ में थे फिर एट्थ में गए फिर नाइन्थ में फिर टेंथ में बीएससी हो गया एमएससी हो गया, पढ़ते पढ़ते कहां तक डॉक्टरेट कर लिया, पहुंच गए बहुत आगे। अब इतने साल से हम ज्ञान सुन रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। टाइम तो हमने बहुत स्पेंड किया है, मधुबन में आते हैं तो पैसा भी स्पेंड करते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं, होता तो है ना, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, उसकी प्राप्ति मुझे क्या हुई, मेरे में परिवर्तन क्या आया, मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं कि हाँ मधुबन में आए 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 बहुत अच्छा लगा बाबा से मिले, बस दैट्स ऑल, बहुत अच्छा था, सेलिब्रेशंस थे, शिव जयंती हुआ, झंडारोहण हुआ, ये हुआ, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे क्या प्राप्ति हुई, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मेरी कितनी उन्नति हुई। और अगर नहीं हुई, मान लीजिए मेरे किसी संस्कार में परिवर्तन नहीं आया, तो इसको क्या कहेंगे, कम खर्च वाला नशीन, क्या कहेंगे, अधिक खर्च और नो नशीन, कम नशीन भी नो नशीन, क्योंकि परिवर्तन तो आया ही नहीं। हम जैसे आए थे अपने शहर से अपने देश से, वैसे ही वापस चले गए, परिवर्तन तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमको बहुत गहराई से इस बात को सोचने की जरूरत है। आज मुरली में गए, हमने क्लास सुनी, मुरली सुनी, एक घंटा मुरली सुनाई गई, आधा घंटा योग में बैठे, लेकिन सचमुच में योग में हम थे या हम कहीं और थे? आधा घंटा तो हमने स्पेंड किया, तो हम सचमुच में योग में थे या कहीं और थे? सचमुच में हमने मुरली सुनी या सिर्फ फिजिकली हम क्लास में बैठे थे? कम खर्च वाला नशीन। अगर मैंने बहुत अच्छे से मुरली सुनी, फिर हॉल से आते आते बाहर आते आते मैंने 5 पॉइंट्स मुरली के रिवाइज कर लिए अपने मन में, नाश्ते तक पहुंचते पहुंचते। चलना तो वैसे ही है, हॉल से आना तो है ही है, नाश्ते पर जाना तो है ही है, रूम में जाना तो है ही है, लेकिन हॉल से निकलते निकलते और पहुंचते पहुंचते नाश्ते तक हमने 5 पॉइंट 7 पॉइंट 10 पॉइंट्स रिवाइज कर लिया, या किसी पॉइंट की गहराई में चले गए, वही समय को हमने कम खर्च वाला नशीन किया। समझा ना बात को आपने? तो इसलिए बाबा ने कहा था परसों की मुरली में या कल मुरली में था इस वरदान में, कम खर्च वाला नशीन, कम समय में ज्यादा कार्य, कम समय में ज्यादा कार्य, कम शब्दों में ज्यादा स्पष्टीकरण। कई बार होता है ना कि कोई लोग बहुत लंबा भाषण बोलते हैं, लेकिन उसका सार क्या था समझ ही नहीं आया। इतना कॉम्प्लिकेटेड बोलते गए, लेकिन उसका सार क्या था भाई? कुछ समझ में आया नहीं, कुछ नहीं समझ में आया, यहां से ऊपर से ही चला गया। नहीं, तो कम शब्दों में ज्यादा स्पष्टीकरण और कम संकल्प मगर शक्तिशाली और एक्यूरेट, वही जो मुझे चाहिए। तो ऐसी जो आत्मा होती है उसके लिए बाबा कहते हैं कि उसके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। किस चीज का भंडार? किसका भंडार? कौन सा खजाना? ज्ञान का खजाना भंडार। और मतलब आप ये इमेजिन करो, अभी ज्ञान का खजाना, तो अगर आप ज्ञान को चिंतन करेंगे तो भरेगा, ज्ञान को आप सुनाएंगे किसी को तो भरेगा। अगर आपने सिर्फ सुना तो आपका ज्ञान का भंडार नहीं भरेगा। ज्ञान का भंडार तब भरेगा जब आप सुनने के बाद उसका चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे, फिर किसी से उसको शेयर करेंगे और फिर उसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तो ज्ञान का और अनुभव का भंडार भरेगा। लेकिन अगर हम कम खर्च करते हैं, कम समय में ज्यादा कार्य, कम शब्दों में ज्यादा स्पष्टीकरण, कम संकल्प मगर शक्तिशाली संकल्प, तो कौन सा भंडारा भरेगा? बहुत क्लियर है, कौन सा भंडारा भरेगा? आपकी एनर्जी, शक्तियों का भंडारा भरेगा, क्योंकि आपका कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, सब एक्यूमुलेट होता जाता है, जमा होता जाता है। आप शक्तिशाली बन जाएंगे, ठीक है ना? और जब भंडारे भरपूर हैं जिसके, उसको कभी चिंता नहीं होती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लौकिक रूप में अगर धन किसी के पास बहुत है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, आजकल तो वैसे उसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी अगर अच्छा कुछ घर में भी कुछ पैसा तिजोरी में भी है और बैंक बैलेंस भी है, तो कोई भी अचानक बहुत बड़ा खर्च आ जाता है तो उसको चिंता नहीं होती है। चलो पैसा किस चीज के लिए, इसी समय के लिए ही तो होता है। लेकिन जब वो नहीं होता है और थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च आ जाए तो फिर चिंता लग जाती है। ऐसा ही बाबा कहते हैं, जब आपका शक्तियों का भंडारा भरपूर होगा तो आपको जीवन में कभी भी चिंता नहीं लगेगी। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी आप नर्वस नहीं होंगे, कभी आपकी मूड ऑफ नहीं होगा, डावाडोल आप नहीं होंगे, क्योंकि आप शक्तियों से भरपूर हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं परंतु वो जो शक्ति का भंडार है वो नहीं भरता है, तो छोटी छोटी परिस्थितियों में हमारी हार हो जाती है। बेशक एक मिनट के बाद ही ध्यान में आ जाएगा, छोड़ो इस बात को, ड्रामा है, ड्रामा में हर एक का पार्ट है, ड्रामा में सब कल्याणकारी है, चाहे एक मिनट के बाद ही याद आ जाए, लेकिन उस समय हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान है परंतु शक्ति नहीं है। ज्ञान थ्योरेटिकल ज्ञान है, शक्ति नहीं है। तो इसलिए हमको ये देखना है कि हम कम खर्च में, अब मान लीजिए जैसे मैंने मिसाल दिया, कम समय में ज्यादा कार्य। तो कोई भी जो बड़े व्यक्ति, दुनियावी रूप में बड़े व्यक्ति होते हैं ना, बड़ी पोजीशन वाले होते हैं, कोई भी बड़ी कंपनीज के मैनेजर्स होते हैं मान लीजिए, जहां पर हजारों लोग काम करते हैं, ऐसे लोग एक वक्त में एक बात नहीं सोचते एक्चुअली, उनकी इतनी बुद्धि चलती है ना, देखते भी वो सिर्फ इन दो आंखों से नहीं है, उनके यहां 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 सब जगह आंखें होती हैं बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उनके लाइफ में फोकस होता है कि मुझे यहां पहुंचना है, एक बहुत क्लियर एम होता है, बहुत क्लियर एम। मैंने मधुबन की बात की कि अपने से हम पूछें, हम इस बार मधुबन आए क्यों आए? बहुत करके जब हम फॉर्म्स भरवाते हैं मधुबन आने के, बहुत मेजॉरिटी ब्राह्मण्स लिखते हैं बाप दादा से मिलने, या बाप दादा से और परिवार से मिलने, मतलब जैसे एक फॉर्मल रूप हो गया। लेकिन इस बार मुझे मधुबन से क्या लेके जाना है? अगर एम नहीं है तो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं होगा, दिन निकल जाएंगे, जब जाने का दिन आएगा कहेंगे अरे इतने दिन जल्दी पास हो गया, थोड़े दिन और रह जाते तो अच्छा था, अरे आप 15 दिन यहां पर रहे उसमें क्या किया, 3 दिन और। क्यों? क्योंकि 15 दिनों को प्रॉपरली यूज नहीं किया। क्यों प्रॉपरली यूज नहीं किया? क्योंकि एम ही नहीं था, एम ही नहीं था। बस ऐसे ही एक जगदीश भाई, सब जानते हैं आप में से कितने लोगों ने जगदीश भाई का नाम सुना है? बहुतों ने देखा, कितनों ने है, अच्छा क्लासेस सुनी है, बहुत अच्छा। तो वो कहा करते थे कि कोई जो ऐसा ही टाइम जिनका पास हो जाता था ना, वो कहते थे सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। तो बस ऐसे ही सुबह से शाम, शाम से सुबह, और ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये ब्राह्मण बच्चों पर ये लागू नहीं होता है। ब्राह्मणों की सुबह भी एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर होती है, ब्राह्मणों की शाम भी एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर होती है, इसलिए उनकी जिंदगी तमाम नहीं होती। वो जीते हैं तो भी बहुत कुछ करते हैं, अगर शरीर छोड़कर जाते हैं तो भी बहुत कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। तो हमारी जिंदगी और लोगों की जिंदगी में तो बहुत फर्क है ना। तो इसलिए अगर एम बहुत क्लियर है, सिर्फ मधुबन आने का नहीं, सिर्फ मधुबन आने का नहीं, एवरी डे, चाहे हम कहीं पे भी हैं, 2 दिन या 3 दिन पहले बाबा ने कहा था, शायद संडे की मुरली में था, कि कैसे मालूम पड़े कि ये आत्मा, अभी आत्मा कमजोर है, संडे की मुरली में था, अभी आत्मा कमजोर है। तो उसमें बाबा ने क्या उत्तर दिया याद है आपको? कौन सा उत्तर था बताइए? अमृत वेला, अमृत वेला नहीं है। और क्या उत्तर था? स्वयं की चेकिंग का नियम नहीं है, स्वयं की चेकिंग का नियम नहीं है। और क्या था, और क्या था? अगर अमृत वेले उठकर अपना दिन के लिए दिनचर्या को सेट करने का नियम नहीं है, दिनचर्या को सेट करने का नियम, और अगर दिनचर्या सेट नहीं की तो चेकिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। किस चीज को चेक करें, कुछ है ही नहीं चेक करने का। अगर मेरे को, मैंने प्लान किया है कि कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो, थोड़ा भी नहीं करना, इरिटेट बिल्कुल नहीं होना है, मैंने प्लान किया ही नहीं और फिर कोई कारण हुआ, गुस्सा आ गया, थोड़ा सा आ गया मगर आ गया, रात को क्या चेक करें, प्लान तो था ही नहीं, ये थॉट भी मन में नहीं आएगा कि मुझे ये चेक करना है, मुझे आज गुस्सा आया कि नहीं आया, मैंने ये भी नहीं रखा था, तो चेक क्या करेंगे। तो ये कमजोर आत्मा की बाबा ने निशानी बताई है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने अपनी दिनचर्या सेट नहीं की और अपने को चेक नहीं करते हैं, उसका नियम नहीं है, तो ये साइन है कि आत्मा अभी कमजोर है, आत्मा अभी कमजोर है। और हमको तो हाँ, दिनचर्या को सेट करने का तरीका, अब हर एक व्यक्ति को दिनचर्या, मतलब एक तो उनकी अपने लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से दिनचर्या होती है ना, भाई किसी का जॉब पर जाना है, किसी को बिजनेस पर जाना है, किसी को घर में रहना है, और उसमें दिनचर्या फिक्स होती है, खाना बनाना है, ये करना वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ दिनचर्या सेट करने की बात ये है, सबसे पहली बात कि ये जो मेरी दिनचर्या लौकिक दिनचर्या है, इस दिनचर्या में मुझे अपनी अलौकिक दिनचर्या को कैसे इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुरली रिवाइज करनी है, तो मेरा मुरली रिवाइज करने का समय कौन सा है, ये मैं फिक्स कर दूं उसके अंदर। अच्छा, मुझे शाम को योग लगाना है, तो कौन सा घंटा, मेरे पास 5 से 6 का टाइम फ्री है, 6 से 7 का है या 7 से 8 का है, कौन सा टाइम मेरे पास है, मेरा ये समय योग लगाने का है, मैं उसको उसमें इंसर्ट कर दूं। एक तो ये बात होती है। मान लीजिए कोई किसी को मंथन करने का बहुत अभ्यास होता है, इंटरेस्ट होता है, तो मतलब मुझे आज इस टॉपिक पर मंथन करना है, तो वो अपने को, इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को काम दे देता है कि आज मुझे इस टॉपिक पर मंथन करना है, तो वो काम कर रहा है, खाना बना रहा है, कपड़े धुलाई हो रहे हैं, हाँ ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि में वो बात है कि आज मुझे इस पर मंथन करने, ये फिक्स है दिनचर्या के अंदर। एक तो ये बात होती है, और दूसरा होता है कि दिनचर्या में हम अपने मन की दिनचर्या फिक्स करते हैं। मान लीजिए हम 4 बजे अमृत वेला शुरू होता है, तो 4 से 6 मुझे किस स्थिति में रहना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फिर 6 से 8 मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, फिर 8 से 10 मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, इस प्रकार से। मान लीजिए अपने मन की दिनचर्या, काम तो कर रहे हैं लेकिन मैंने अपनी मन की दिनचर्या को सेट कर दिया, तो फिर मुझे पता है मैंने ये प्लान किया है 4 से 6 ऐसा, 6 से 8 ऐसा वगैरह वगैरह, तो रात को हम देख सकते हैं कि मैंने 4 से 6 सेट किया था, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो सचमुच शांत स्वरूप रहा या नहीं रहा, मैं प्रेम स्वरूप हूँ रहा या नहीं रहा, इसको कहते हैं दिनचर्या को सेट करना। तो अगर हम अपने मन की दिनचर्या को और अलौकिक प्रोग्रेस की, जो हमारी पढ़ाई है ज्ञान की, योग की, सेवा का, मान लीजिए सेंटर पे सेवा होती है, प्रदर्शनी में सेवा होती है, तो सेवा के लिए मुझे कितना समय निकालना है, ये मैंने फिक्स कर दिया अपने प्लान के अंदर। रेस्ट, बॉडी को रेस्ट देना है, तो किस समय मुझे आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट बॉडी को रेस्ट देना, ऐसा नहीं कि सो गए तो सो ही गए 4 घंटे के लिए, नहीं, मुझे 40 मिनट रेस्ट देना, ये मेरा दिनचर्या में ये मैंने प्लान सेट किया है। तो अगर मेरा ऐसा प्लान सेट होता है तो बहुत कम चांसेस हैं हमको व्यर्थ संकल्प आएंगे, बहुत कम चांस है, क्योंकि मैंने फिक्स कर लिया ऑलरेडी अपने मन की दिनचर्या को, मैंने सेट कर दिया। तो अगर मेरा मन मेरे कंट्रोल में हो जाता है, व्यर्थ संकल्प आते नहीं है, तो मन कंट्रोल हुआ तो कर्मों में तो नेचुरली श्रेष्ठता आ जाएगी ना। मन ही तो कर्म का बीज है, संकल्प कर्म का बीज है। तो बाबा इसलिए कहते हैं अगर आप सेट नहीं करते हैं, माना आप मन के अधीन हैं, आप समय के अधीन हैं, समय आपके अधीन नहीं है, मन आपके अधीन नहीं है, आप अधीन हैं। अगर आप अधीन है तो कमजोर हो गए ना, फिर अधिकारी शक्तिशाली होता है, अधीन तो कमजोर है। तो इसलिए बाबा ने एक ही शब्द में सेंटेंस में बोल दिया, जो दिनचर्या को सेट नहीं करता है वो कमजोर है, और हमको तो शक्तिशाली बनना है, हमको तो शक्तिशाली बनना है। तो शक्तिशाली बनने के लिए बहुत जरूरी है कि इस लेसन को हम बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, कम खर्च वाला नशीन। कहीं पर भी कुछ भी हो, मतलब ऐसी आदत हम डालें कि कोई भी चीज हमारी वेस्ट ना जाए। अर्थात दूसरे शब्दों में हमें कभी रिपेंट ना करना पड़े, कभी रिपेंट ना करना पड़े। आपने सुनी होंगी जरूर बाबा के, साकार बाबा के समय की, जब यज्ञ में बहुत धन भी नहीं था उस समय, और यज्ञ के शुरू में भी, हिस्ट्री में भी हम लोग सुनते हैं कि बाबा कभी भी कोई चीज को वेस्ट होने नहीं देते थे। मान लीजिए कपड़े धुलाई हुए, सुखा दिए गए, और जिसकी जिम्मेवारी थी तो वो तो सुखा के जाके कमरे में सो गया। उसके बाद तो बादल आ गए, और फिर वो बारिश आएगी, फिर सब कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे, फिर गीले हो जाएंगे, फिर उनको कहाँ सुखाएंगे। अब उसको, उस व्यक्ति को जो जिम्मेवार है, उसको इस चीज की संकल्प नहीं है, वो तो सो गया। और बाबा ने देखा कि बादल बन गए हैं, तो बाबा खुद अपने रूम से निकलकर सब कपड़े उतार दिया, उतार के रख दिया। और जब बारिश खूब तेज आ गई, वो व्यक्ति की नींद खुल गई, दौड़ा वो कि अब मुझे कपड़े, सारे कपड़े गीले हो गए होंगे, और वहां तो कपड़े हैं ही नहीं। तो अब इसको कहते, अब मान लीजिए इसमें खर्च और बाला नशीन की क्या बात है। अब आप इमेजिन करिए अगर सब कपड़े गीले हो जाते हैं, बारिश आ रही है, बाहर उनको डाल नहीं सकते, अंदर डालेंगे या तो फैन चलाएंगे, फैन चलाएंगे सुखाने के लिए, या फिर थोड़े थोड़े हल्के हल्के गीले होंगे तो आयरन करेंगे, उस जमाने में कोयले वाली आयरन होती थी। हाँ, तो सार क्या हुआ, सार क्या हुआ, पूरे क्लास का सार क्या हुआ जी? कम खर्च बाला नशीन, ये तो टॉपिक हुआ, लेकिन उसका मतलब, उसके लिए जरूरत किस चीज की है जी? इफेक्टिवनेस। हाँ, क्या बोला? प्लानिंग बुद्धि, और क्या बोला? दिनचर्या की सेटिंग, और बहुत क्लियर एम अपने सामने रखना बहुत जरूरी है। हाँ, प्लानिंग बुद्धि भी होना चाहिए, और अपने को सजा दो। हाँ अगर गलत काम किया तो सजा दो। हाँ, गलत काम किया तो सजा दो। तो किसी ने ये भी पूछा आज मुझसे प्रश्न कि वो सजा क्या देनी होती है अपने आप को। चोली अपनी दूसरे को दे दो कईयों के लिए तो वो फायदा होगा, क्योंकि किसी को डायबिटीज है, वो टोली खाता नहीं, वो सोचता है कि मैं किसको दूं। हाँ, तो कौन सी वाली सजा दें दो जो मतलब अच्छा फायदा हो उसका, क्योंकि बाबा हर एक चीज में फायदे की बात सिखाता है ना हमको। तो उसमें बताया कि मान लीजिए उसका एक्चुअली प्रश्न जिस बहन ने मुझसे पूछा ये था कि किसी ने कहा कि कई संस्कार ऐसे बन जाते हैं जो मतलब जो हमको पता ही नहीं चलता कैसे बन गए, उसका अवेयरनेस ही हमको नहीं होता है और वो बन जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो इससे अगर हम इसकी थोड़ी गहराई में जाएं तो समझ में आता है कि हमें अपने पर और विशेष रूप से अपने संकल्पों पर अटेंशन नहीं है, क्योंकि संस्कार स्वयं तो ही तो नहीं बनता है ना, कर्म से संस्कार बनता है और कर्म का बीज संकल्प है। अगर मुझे कोई खराब संकल्प या व्यर्थ संकल्प चल गया, फिर सेकंड टाइम चल गया, चेक एंड चेंज। हाँ, तो संकल्प चल गया, अगर मुझे अटेंशन है तो संकल्प चला, ये रॉन्ग हो गया, व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प, अब ये रॉन्ग हो गया, अब मुझे अपने को सजा देनी है। तो क्या सजा दें? बैठ करके अपने को कहें कि तुमको 100 अच्छे संकल्प लिखने हैं, 100 संकल्प अच्छे वाले लिखो। भूख भी लगेगी बीच में, कहीं पर कुछ और इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग हो रहा होगा, नहीं, पहले मुझे 100 अच्छे संकल्प लिखने हैं बस। अगर क्योंकि कई दफा ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं अच्छे संकल्प कैसे क्रिएट करें, खराब संकल्पों को तो क्रिएट करना सीखना नहीं पड़ता है ना, पर अच्छे संकल्पों को क्रिएट करना सीखना पड़ता है। जैसे किसी ने कहा कि फूल उगाना है तो वो मेहनत करनी पड़ती है ना, और अगर वीड्स हैं वो तो ऐसे ही उगाते हैं, ऐसे ही जंगल तो खुद ही उगाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तो इसीलिए ऐसे ही है कि कुछ अगर हमसे वेस्ट होता है, टाइम एनर्जी धन पानी, हाँ, दादी जान की बहुत बार सुनाती हैं कि जब वो पूना में थी तो एक बार चावल धुलाई कर रही थी, मामा वहां पर आई हुई थी, और चावल धुलाई करते करते 5 चावल के दाने उसमें सिंक में गिर गए। तो मामा ने कहा ये क्या है, चावल गिर गए इसमें, धुलाई होता ना, धुलते धुलते गिर जाता है। तो मामा ने कहा नहीं, उसको उठाओ, उसको धुलाई करो। तो मतलब यहां तक बाबा सिखाते थे। यहां तो पहले जमाने में वो लाइटर नहीं होता था ना गैस ऑन करने के लिए, माचिस मैच स्टिक से ही करते थे। तो वही वाली मैच स्टिक, उसको ऐसा यूज करके फेंक मत दो, अगर आपको सेकंड बर्नर करना है तो उधर से यूज करो। मैच स्टिक छोटी सी चीज, क्या आप बात करते हो। लेकिन कहावत है ना कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। इसी को जब कुमारियां बाबा को ये प्रश्न करती थीं कि बाबा आप कहते हैं तन मन धन की सेवा के लिए, तो पहले तो कोई कुमारियां जॉब वगैरह नहीं होता था, और अगर पेरेंट्स फेवर में ना हो तो वो भी इतना पैसा उनको नहीं देंगे। तो बाबा कहते थे मम्मा विशेष रूप से कि अगर इस प्रकार आप इकोनॉमी करते हो, आज आपने दिन में 4 मैच स्टिक्स की इकोनॉमी कर दी, तो ये आपके धन के अकाउंट में चला जाता है। हाँ वही बात। हाँ तो इसलिए मतलब अच्छे से समझना है हमको, इसको बहुत प्रैक्टिकली समझना। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंजूस हैं, कंजूस हमको नहीं बनना है, लेकिन बहुत फ्राक दिल बाबा कहता है कुछ। अब मान लीजिए कभी लाइट की बात आती है कि कहीं हम लोग यहां से निकल गए और लाइट्स ऑन है सारी, तो ये वेस्टेज है। लेकिन फॉर एग्जांपल अब आंगन में अगर अभी तो लाइट्स ऑन नहीं होंगी, अभी तो ऑफ ही हैं, गैलरीज जो होते हैं कॉरिडोर्स कमरों के आगे हैं, हाँ वहां इतना लाइट नहीं पहुंचेगी मान लीजिए। तो शाम का समय है, 5 बजे 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो गया, मान लीजिए वहां कॉरिडोर में कोई भी नहीं है, तो प्रश्न उठता है कि हम वहां लाइट को ऑफ करें या ऑन रखें। हा? अब अगर हम ऑफ करते हैं तो लगता है हम इकोनॉमी कर रहे हैं, वहां पे कोई भी तो नहीं है तो इसलिए कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है वहां लाइट की, अरे नहीं ये फिर वहां पर आप ऑफ नहीं कर सकते हैं, वहां पर कोई भी अचानक से आएगा उसको स्विच नहीं दिखाई देगा, तो वहां आपको ऑन रखने की जरूरत है, चाहे जो एक मिनिमम लाइट होती है एटलीस्ट उसको तो ऑन रखने की जरूरत है। क्लास का समय होता है, भाई बहनों को आना होता है सेंटर पे और अंधेरा लगा हुआ हो सेंटर पर, लाइट जो है वो खुशी की मतलब निशानी है ना, तो अगर हमने लाइट ऑन रखी है लोग आ रहे, वेलकमिंग साइन है ये, तो मतलब समझना है इस बात को अच्छे से कि कम खर्च वाला नशीन क्या होता है। अब चार गेस्ट हमारे यहाँ आने वाले हैं तो हमको सोचना चाहिए कि चार के लिए नहीं पांच के लिए बनाएं तो बेटर है, क्योंकि अचानक से किसी ने कुछ एक्स्ट्रा लिया मांगा, ऐसा नहीं कि हम उतना ही लास्ट तक बनाएं जो उसको खुदर खुदर के निकालना पड़े हमको उसमें से, तो वो तो फिर अच्छा नहीं होगा, वो फिर बाला नशीन नहीं है। कम खर्च तो है मगर वो बाला नशीन नहीं है, मतलब इसको समझना है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, ओम शांति। कुछ पूछना चाहें? अमित भाई देखा आपने, हो जाएगा तो आप ले आइए। हाँ हाँ आगे ले। तो कुछ प्रश्न तो नहीं आपको किसी को? जी बोलिए। हाँ जी हाँ, भट्टी या रिट्रीट, मतलब इसमें ये बात है कि उसमें भी फिर एम की बात है, यू नीड टू कीप योर एम, कि आपने भट्टी किस एम से की। भट्टी भी क्या होता है, कभी ज्ञान की भट्टी होती है, कोई योग की भट्टी होती है, कोई दिव्य गुणों की भी भट्टी होती है, तो मैंने किस एम से भट्टी रखी थी और उसी एम को रख करके अगर हमने वो भट्टी की, तपस्या की हमने, तो फिर उसके बाद हम उसका रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट हुआ, और अगर वो रिजल्ट ठीक है तो इट्स ओके, भट्टी वॉज सक्सेसफुल, और अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं निकला है तो फिर दोबारा चेक करने की जरूरत है, भट्टी में कुछ कमी थी या मेरे मेथड में कुछ कमी थी, और या फिर कभी कभी रिजल्ट इमीडिएटली नहीं निकलता है, इट टेक सम टाइम, तो उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है। सो लेकिन सबसे पहली बात है एम, अगर आपके सामने एम नहीं है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ना कैसे चेक करें उसको, एम रखने की जरूरत है। तो कहीं पे भी कोई भी दिन हम शुरू करते हैं, चाहे वो स्पेशल डे है चाहे वो ऑर्डिनरी डे है, स्पेशल कोई इवेंट है या ऑर्डिनरी है, और लेकिन एम अब मेरा क्या है, दिन का एम क्या है। इसीलिए बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने सामने रखो, ये आपका एम एंड ऑब्जेक्ट है, मुझे ऐसा बनना है, अपने को कंपेयर करते रहो, इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे ऐसा बनना है। बाबा को वो सदा याद रहता था, ब्रह्मा बाबा को, हमको सदा याद नहीं रहता है, तो इसलिए बाबा कहते थे सेंटर पे आओ, क्लास में आओ, घर में आओ, हर घर में होना चाहिए ये वाला चित्र, तो इस प्रकार से उसका फायदा ले सकते हैं। ओके, ओम शांति। अभी दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी टोली लेके आए हैं, शायद आप सबको पूरी हो जाएगी। ये रशिया को सेवा मंगोलिया की भी मिली है, मंगोलिया में 2 साल से सेवा शुरू हुई है, वहां से बाबा की एक बच्ची आत्मा निकली है, पक्की ब्राह्मण और भी है लेकिन एक ही अब की बार मधुबन में आई है, तो वो थोड़ी सी टोली लेके आए थे, हमने सोचा चलो शायद यहाँ पूरा हो जाएगा, तो योग के बाद टोली लेके जाइए। ओम शांति।
गुजरते जा रहे पल प्रभु की याद।